ओम शांति। एक उदाहरण और था, कौन सा? वकील। तो जैसे वकील होते हैं, वो क्या करते हैं? किताबें पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लॉज भी अपडेट होते रहते हैं। तो हमारी भी मुरली क्या है? डिवाइन लॉ बुक। मुरली में भी क्या है? लॉज है। और वो लॉज भी क्या होते रहते हैं? अपडेट होते रहते हैं। तो हमें अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते रहना है। पता नहीं कौन सी जीवन की समस्या का उत्तर कहाँ मिल जाए, पता नहीं मन में किस उलझन का उत्तर कहाँ मिल जाए। तो स्टडी होती रहे, ठीक है? तो चार चीजें होती है स्टडी में। एक होता है लिसनिंग, सुनना। दूसरा होता है बोलना, स्पीकिंग। तीसरा होता है पढ़ना। और चौथा होता है लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये चारों ही चीजें रोज होती रहे। जब हम क्लास सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, तो क्या कर रहे हैं? लिसनिंग। जब हम यहाँ बोलते हैं, मुरली का रिवाइज करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम स्पीकिंग। तो ये लर्निंग की दूसरी स्टेप। तीसरी रीडिंग, जब हम मुरली पढ़ते हैं या कोई भी ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, तो पढ़ना कैसे, उस स्किल को हम डेवलप कर रहे हैं। और लास्ट में जब हम लिखते हैं, ये सबसे एडवांस स्किल है। तो चाहे चिंतन लिख रहे हैं, चाहे मुरली लिख रहे हैं, चाहे होमवर्क लिख रहे हैं, कुछ भी, या एग्जाम लिख रहे हैं, तो ये चारों ही स्किल्स क्या करना है? रोज अपडेट होते रहने चाहिए। एक स्टूडेंट की क्या निशानी है? वो सुनता भी है, वो पढ़ता भी है, वो लिखता भी है और बोलता भी है, ये चारों, खेलता भी है। और लर्नर्स जो होते हैं, वो तीन प्रकार के लर्नर होते हैं, VAK। एक होते हैं विजुअल। विजुअल अर्थात ये वो लोग होते हैं जो देखते हैं चीजों को और उनको याद रहती है। विजुअल, उनको चित्र याद रहते हैं, पिक्चर्स याद रहते हैं, ऐसी चीजें उनको ज्यादा याद रहती है जो देखी हुई है। दूसरे होते हैं ऑडिटरी, सुनी हुई चीजें उनको ज्यादा याद रहती है। लेक्चर सुनते हैं, पॉडकास्ट, लेक्चर्स, जो भी वो सुनते हैं सीधा अंदर घुस जाती है उनके। तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर वो है जो जब करते हैं तो उनको ज्यादा याद रहती है, अनुभव करते हैं तो उनको याद रहती है, रोल प्ले करते हैं, एक्टिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो याद रहते हैं। तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के लर्नर्स होते हैं। एक तो विजुअल, जिनको जब वो देखते हैं, जैसे मुरली, अगर जब तक वो देखते नहीं है उनको याद नहीं रहती है, खाली मुरली सुनेंगे तो उनको याद नहीं रहेगा। दूसरे होते हैं जो सुनने से उनको ज्यादा याद रहता है। तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक, जब तक वो करते नहीं है तब तक उनको अंदर घुसता ही नहीं है, कितना भी उनको समझाओ, तो वो तीसरे प्रकार के लर्नर है। और कुछ होते हैं, और जरूरी नहीं कोई ऐसे ही होंगे, किसी में दो एक साथ होंगे, कोई तीनों एक साथ होंगे, उनको देखना भी, जब देखेंगे, जब सुनेंगे और जब करेंगे तो ही समझ में आता है। कुछ कुछ को केवल सुन लिया और जीवन परिवर्तन, केवल एक बार सुन लिया और हो गया, इतना डीप और गहराई तक चला जाता है उनके। तो ये ऐसे दो प्रकार की ये बातें हैं। और तीसरी एक बात, आज एग्जाम देनी है सबको, और जो टॉपर होता है ना, उसकी परिभाषा क्या है? टॉपर वो नहीं है जो 100 मार्क्स जिसको आते हैं, टॉपर वो है जिसकी पढ़ाई और एग्जाम देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फिर भी अपने मन के खिलाफ जाकर वो पढ़ाई करता भी है और एग्जाम भी देता है, वो है रियल टॉपर, जो मन का विद्रोह करता है। मन मन को ज्यादा मानता नहीं है, मन मन तो भटकाने की कोशिश करता है, मन भटकाता है, इधर उधर लेके जाता है। तो टॉपर, रियल टॉपर कौन है? जो अपने मन को जीतता है। पुराने जमाने में एक शब्द था गोस्वामी, गोस्वामी अर्थात जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। एक होता है गोदास, जो दास है, जो शूद्र है, उन्हें शूद्र कहा जाता था। पर जो गोस्वामी अर्थात स्वामी, स्वामी अर्थात स्वराज्य अधिकारी, मास्टर, राजा, मालिक, अपने इंद्रियों का जो राजा है, सम्राट है वो। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे कोई लेना देना। जैसे भाई साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, दो प्रकार के लोग आएंगे जीवन में, कौन से? क्लास सुनी ना अभी, तो क्लास भी कैसे सुननी है? चात्रक पक्षी जैसे बैठ के सुनने, एक एक जैसे बूंद अमृत है। और जब अनुभवी आत्मा आए कुछ सुनाए तो पूरा दोनों आंखें दोनों कान खोल के एक भी शब्द छूटने ना पाए, ऐसे सुनना है। लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सब कुछ एक साथ हमें डेवलप करना है। तो दो प्रकार की आत्माएं आएंगी जीवन में, कौन सी? एक वो जो हमें डिप्रेस करेगी, दुखी करेगी, उदास करेगी, टॉन्ट करेगी, कमेंट करेगी, टांग खींचेगी, नीचे गिराएगी, उनका लक्ष्य ही ये है। वो गिराएंगे बिना किसी पश्चाताप के, उन्हें कोई दुख नहीं। एक वो आत्मा है, और दूसरी आत्माएं आएंगी जो उड़ाएगी, जो उत्साह देगी, प्रोत्साह देगी, प्रोत्साहित करेगी, आगे बढ़ाएगी हमेशा। तो दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी, ये नहीं कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, दोनों ही आवश्यक है, और दोनों ही इस सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं। ये क्या है? दोनों ही इस सृष्टि की व्यवस्थाएं हैं। जैसे सन्यासी भिक्षा मांगता है द्वापर से, जो सन्यास धर्म आया, जाते हैं भिक्षा मांगते हैं, गृहस्थी भिक्षा देते हैं। अब क्या देने वाला ज्यादा बड़ा है या लेने वाला छोटा है, क्या है ये? ना कोई बड़ा ना दाता, वास्तव में दाता है ही नहीं, याचक वास्तव में याचक है ही नहीं। ये व्यवस्थाएं हैं इस सृष्टि की, ये अपने कर्तव्य में जो आगे जाएगा वो आगे जाएगा। दिखाया है शास्त्रों में छोटा सा गोरक्षनाथ, गोरखनाथ, उसके गुरु मच्छिंद्रनाथ एक गांव में पहुंचते हैं। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ की परीक्षा लेना चाहते, छोटा सा है गोरखनाथ, 12 साल का, उसको कहते जाओ जाकर भिक्षा लेके आओ। वो गांव में जाता है, भिक्षा लेके आता है, एक घर में भोज बना हुआ होता है, हमारी भाषा में ब्रह्मा भोजन, सब कुछ था। वो गृहिणी थाली देती है और वो थाली लेके अपने गुरु के पास रखता है, और गुरु बहुत चाव से खा रहे, वो बैठ के देखता है। फिर गुरु कहते ये जो वड़े है ना, ये मुझे बहुत पसंद आए, जाकर 2 वड़े और लेके आओ। उसके मन में कोई संशय नहीं, निश्चल बालक है, बहुत अतीव प्रेम है अपने गुरु से। वो जाता है उसी घर में और कहता है अलख निरंजन माते, मुझे 2 वड़े और चाहिए। वो कहते वाह रे, अभी तो आया था, एक पूरी थाली दी, अब वापस वड़े चाहिए। वो कहता है ये मेरी विनती है, मेरे गुरु को 2 वड़े और चाहिए, उन्हें बहुत पसंद आए हैं। तो थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, और वो इरावती, वो माता कहती है, वो भी अच्छी ही स्त्री होती है, बहुत धार्मिक, पर उसके मन में उस समय क्या हो जाता है पता नहीं, वो कहती है दूंगी, तू अपना आँख, अपनी आँख मुझे निकाल के दे तो मैं दूंगी तुमको। तो छोटा सा बालक है, वो अपनी आँख ही निकाल के दे देता है, पूरा लहूलुहान। सारे घर के लोग भाग के आते हैं, ये क्या कर दिए, क्या कर दिया। और फिर वो कहती है इसको 2 वड़े, और वो पूरा उसी आग के साथ वो निकल जाता है। और अपने गुरु को भोजन देता है, जो दो वड़े। गुरु पूछता है ये क्या हुआ, वो कहते हैं आप खाओ पहले वो बाद में कुछ नहीं हुआ, आंख में तुम्हारी हाथ में क्या है, उसकी हाथ में आंख होती है। तो गुरु उसको देखता है और कहता है क्या हुआ वो मैं नहीं जानना चाहता, पर इतना तो पक्का है कि तुम्हारी जो गुरु भक्ति है श्रेष्ठ है। और वो आंख गुरु मंत्र शक्ति से वापस लगा देता है। वो बच्चा कहता है आप उस स्त्री पर क्रोधित मत होना, उसे आप क्षमा कर दो, फिर हम यहाँ से जाएंगे। और फिर दिखाया है वो स्त्री इतना पश्चाताप करती है, इतना पश्चाताप, मेरे से इतना बड़ा पातक हो गया, पता नहीं मेरे बुद्धि को क्या हो गया, मैं इतनी खराब नहीं हूं, पर उस समय मुझे क्या हो गया पता नहीं कि मैंने एक छोटे से बच्चे से उसकी आंख मांग ली। और फिर बाद में उनका कभी भी मिलन नहीं होता है, वो जाते हैं सारे गांव वाले ढूंढने, तब तक ये दोनों अलख निरंजन आदेश निकल चुके होते हैं। तो तब गुरु मच्छिंद्रनाथ गोरख से कहते हैं ये व्यवस्थाएं हैं सृष्टि की, हम जो भिक्षा मांग रहे हैं इसलिए नहीं कि हमको चाहिए। गुरु खुद कहता है उनसे ये मत समझ कि मुझे दो वड़े चाहिए थे, मैं तो अन्न की आसक्ति से पार निकल चुका हूं, मोह माया से मैं निर्मोही हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस। और ये परीक्षा वास्तव में उस गृहस्थी की भी थी, पर अभी पाप तो हो गया, विकर्म तो हुआ है, और बाद में वो ये लोग मिलते भी नहीं उसे। वो कहती है अब मैं कैसे जीऊं, बट वही विधि का विधान है, अब पाप हो चुका है, हमने किसी को दुख दे दिया। फिर उसके स्वप्न में आता है वो गोरख छोटा बच्चा और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके पत्नी को सुनाती है, पति थोड़ी मानता है, वो कहते तुम्हारे मन में हो रहा है अब ये सब। तो दाता ऐसे नहीं जिसके पास पैसे बहुत है वो दे रहा है किसी गरीब को, तो ये नहीं इस भाव से दे कि मैं बहुत अमीर हूं, तो उसमें कुछ नहीं है, ये व्यवस्थाएं है इस सृष्टि की, इस संसार की। कोई मधुबन रहता है, कोई सेंटर रहता है, कोई गृहस्थ में रहता है, एक दूसरे से बड़ा ऐसा है क्या? ना, कोई अभी अभी ज्ञान में आया है तो क्या वो कम छोटा है? ना, सबके अपने अपने किरदार है, अपने अपने पार्ट है, सभी कलाकार है। तो आज एग्जाम का दिन है, तो एग्जाम के दिन 33 मुरलियां है। एग्जाम से पहले कई बार ये बताया जाता है, जो लोग लिखित एग्जाम होती है ना हमारी, तो एमसीक्यू है, सबसे पहले 2-3 रूल होते हैं एग्जाम के, हाथों को थोड़ा वार्म अप करने के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट होती है ताकि हाथ थोड़े से खुले, और दूसरा रफ पेपर पे कुछ भी आड़ा टेढ़ा खींचना है, सीधा जाके एग्जाम पे लिखते नहीं है, पहले रफ पेपर पे पेन चालू है कि नहीं ऐसे ऐसे कर देना है, एक तो ये। दूसरा होता है एयर राइटिंग। एयर राइटिंग क्या होता है? हवा में लिखो, लिखो शिव बाबा याद है, लिखो अभी शिव बाबा, अच्छे से लिखो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, शी श व शिरोरेखा शिव, ऊपर से मात्रा बा बा याद है क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं एयर राइटिंग। हवा से, हवा में लिखना, एयर राइटिंग। तो ये भी हाथों की एक्सरसाइज है। और तीसरा, जब वो स्कूल में बच्चे पेपर लिखते हैं तो एक रफ पेज रखना होता है हमेशा। क्या रखना है? एक रफ पेज, उसमें हम रफ वर्क करें कि क्या क्या लिखना है कोई, और जो इजी इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, जो आते नहीं है उसको छोड़ देना है, फिर बाद में देखेंगे उसका। रफ पेपर हाँ होता है, और नहीं तो अलग से रफ पेपर लास्ट में, जिसमें हम थोड़ा सा अपना चिंतन लिखे कि अच्छा ये याद नहीं आ रहा, ये कौन सी मुरली है, कहाँ की मुरली है, क्या डेट है, क्या पॉइंट थी, थोड़ा सा रफ चिंतन लिखो ना तो याद आ जाता है। तो रफ वर्क, एयर राइटिंग, स्क्रिबलिंग स्क्रैचिंग वो, और मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहना है। पर एग्जाम तो मोबाइल में देते हैं, वो अलग है, उससे पहले और एक लाइन है जो 11 बार लिखनी है, ये आज का होमवर्क है। यह एग्जाम मेरे लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। इंग्लिश शब्द ही रखने हैं, हिंदी में भी यह एग्जाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा। क्या लाइन है? यह एग्जाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा। तो पढ़ते रहना है, हम स्टूडेंट हैं, सीखते रहना है, सीखते रहना है, स्किल्स को अपग्रेड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ताकि अध्यात्म के साथ साथ थोड़ा सा खेलपाल भी चालू रहे। नहीं तो वही वही सुन सुन के क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कुछ नवीनता उसमें हो, कुछ स्पार्क, कुछ चिंगारी उसमें हो, तो ये सब चीज़ें होती रहे। और आज की जो मुरली रिवाइज की, उसमें ये पांच महावाक्य थे। स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्यूरिटी, जो बताया अभी। प्यूरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे बाबा का उदाहरण दिया, कितना भी कोई विरोधी है, शुभ भावना शुभ कामनाओं में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर। सदा यह स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूं। सहन करना ये एक आर्ट है एक्चुअली, हर व्यक्ति को इसे डेवलप करनी है, अपनी सहनशीलता की शक्ति को, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जो सन्यासी लोग होते हैं ना, वो ये पहनते थे, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, काला काला, वो चुपता रहता है। कुछ लोग, कुछ सन्यासी काला मेखली ऐसा कुछ नाम उसको कहते हैं, वो क्यों क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो चुपता कंटिन्यूस चुपते रहता है ना, तो आदमी जागृत रहता है। और दूसरा उसका कारण होता है ब्रह्मचर्य, तो वो चुपते रहता है। कुछ यहां पे भी पहनते हैं जो चुपता है, 24 घंटे चुपता रहता है वो। पेट की बात नहीं, पर वो चुभना जो है ना, वो जागृति की निशानी है। वो चुपता है, उसे याद दिलाता है कि तू तपस्वी है, तू भोगी नहीं है। वो लोग किसी जाते भी थे तो गांव के बाहर ही रुकते थे, एक ही घर से भिक्षा लेंगे बस, विरक्त। क्योंकि अगर एक जगह ज्यादा रुके तो मोह माया हो जाती है, आसक्ति हो जाती है स्थान से, व्यक्ति से, भोजन से। इसलिए विरक्त भाव, सब कुछ करते हुए जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तो सदा यह स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूं या देवी हूं। लास्ट, अमर भाव का वरदान कभी नहीं भूलना। पुरुषार्थ के मार्ग में पता नहीं कितने लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। जो आए थे तो कितनी कितना ऊंचा पुरुषार्थ करते थे, इतना ऊंचा पुरुषार्थ करते थे, आज दूर दूर तक भी दृष्टिगोचर नहीं होते। कहां चले गए पता नहीं, किन गुफाओं में खो गए, किन कंदराओं में बैठ के अकेले तपस्या कर रहे हैं। कई ज्ञान छोड़ के चले गए, कोई यही है, कोई है यहां पर फ्रस्ट्रेशन में जी रहे, डिप्रेशन में जी रहे, क्योंकि वो जो ऊर्जा है उसको रूपांतरित नहीं किया। वो जो काम की ऊर्जा है उसको जब तक ऊर्ध्वगामी नहीं बनाते, वो नीचे जाती है। अगर उसको दबाया, सप्रेस कर दिया, तो डिप्रेशन बन जाती है, फिर फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है, कुंठित जीवन। ना इधर ना उधर, ना संसार में जा सकते, ना यहां आगे बढ़ रहे। दुविधा में दो गए, ना माया मिली ना राम, ना राम मिला ना माया मिली, ना उधर की है ना इधर की है, त्रिशंकु जैसे उल्टे लटक रहे। क्या करना है वही समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज। ना पुरुषार्थ करते हैं ना भोग विलास में है, बीच में लटक गए। ना ज्ञान छोड़ सकते हैं ना ज्ञान में है, अजीब सी अवस्था है। तो इसीलिए स्वयं को ऊर्जावान रखने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो कुछ नवीनता होती रहे, कुछ एग्जाम देते रहो, प्रकृति के सानिध्य में जाते रहो, भोजन पर प्रयोग करते रहो, कुछ ना कुछ नया नया करते रहना है। तो ये था आज का सारा कार्य। कोई पॉइंट और रह गई है जो भाई साहब ने बताई कि हो गई सारी? पन्नालाल भाई ने सारी कवर कर ली। लगभग सारी कवर हो गई। तो दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, इसको 11 बार लिखना है एग्जाम देने से पहले। यह एग्जाम मेरी लाइफ का बेस्ट एग्जाम होगा, ये लाइन लिखना है। फिर आज एग्जाम देना है, आज कोई भी होमवर्क नहीं है, ग्रुप पूरा बंद रहेगा 24 घंटे तक आज से, तो कल सुबह ही खुलेगा 6 बजे के बाद। ओम शांति। Ooh, 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 ooh.
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून
सुकून सुकून सुकून।
शिव बाबा तू ही देता दिल को सुकून, दर्द के पार सुकून, भीड़ से दूर सुकून, खुद से मेल सुकून, सांसों की राहत सुकून, रात की गोद सुकून, आंखों की नींद सुकून, भीतर का घर सुकून, विश्राम का नाम सुकून। हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून,
मौन की भाषा सुकून।